नमस्कार. रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आर जे तेजल आपल्या सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत करते. जाणून घेऊया चालू घडामोडी. डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस यांची जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणजेच WHO महासंचालक म्हणून पुन्हा निवड झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने 16 ऑगस्ट 2022 पासून दुसऱ्या टर्मसाठी WHO महासंचालक म्हणून टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस यांची पुन्हा नियुक्ती केली आहे. जिनिव्हा येथील 75व्या जागतिक आरोग्य संमेलनादरम्यान त्यांची पुन्हा निवड करण्यात आली. डॉक्टर टेड्रोस 2017 पहिल्यांदा निवडून आले होते. WHO सामील होण्यापूर्वी डॉक्टर टेड्रोस यांनी इथिओपियामध्ये परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आणि आरोग्य मंत्री म्हणून काम केले होते. वळूया पुढील बातमीकडे. नवी दिल्ली येथील प्रगती मैदानावर भारतातील सर्वात मोठ्या ड्रोन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या महोत्सवाचे उद्घाटन पार पडले आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून कीटकनाशकांचा शिडकावा कसा करायचा याचे प्रात्यक्षिक या महोत्सवात दाखवण्यात येत आहे. हा महोत्सव 2 दिवसांचा असून आजच्या दिवशी म्हणजे 28 मे रोजी हा महोत्सव संपणार आहे. 1600 अधिक लोकांचा सहभाग या महोत्सवात असून 70 अधिक प्रदर्शक ड्रोनच्या विविध वापराचे प्रकार दाखवणार आहे. सरकारी अधिकारी, सशस्त्र दल, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, खाजगी कंपन्या आणि ड्रोन स्टार्टअपसह अनेक प्रतिनिधी या महोत्सवात सहभागी होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ड्रोन चालवणाऱ्या शेतकऱ्यांशीही संवाद साधणार आहेत. या महोत्सवात 70 अधिक प्रदर्शने भरवण्यात येणार असून यामध्ये ड्रोनच्या विविध उपयोगांबाबत माहिती दिली जाणार आहे. या महोत्सवात डिजिटल माध्यमातून ड्रोन पायलट प्रमाणपत्रांचे वितरण, उत्पादनांचे उद्घाटन, पॅनल चर्चा, ऑपरेशन्स दाखवण्यात येणार असून मेड इन इंडिया ड्रोन टॅक्सीची प्रतिकृतीही दाखवण्यात येणार आहे. वळूया नौदलाच्या बातमीकडे. भारतीय नौदलाची स्वदेशी बनावटीची मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र स्टेल्थ विनाशिका INS कोलकाता मुंबई नेव्हल डॉकयार्ड येथे आयोजित एका दिमाखदार सोहळ्यात भारतीय लष्कराच्या सर्वात मानाच्या पायदळ रेजिमेंटपैकी एक असलेल्या महार रेजिमेंटशी संलग्न झाली. लेफ्टनंट जनरल सी बन्सी पोनप्पा AVSM VSM भारतीय लष्कराचे ॲडज्युटंट जनरल आणि महार रेजिमेंटचे कर्नल, रिअर ॲडमिरल समीर सक्सेना NM फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट ब्रिगेडियर नवनीत जरियाल, कमांडंट ब्रिगेडियर नवनीत जरियाल महार रेजिमेंटल सेंटर आणि कॅप्टन प्रशांत हांडू NM कमांडिंग ऑफिसर कोलकाता यांनी संलग्नता सनदीवर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि जहाजावर हा संलग्नता सोहळा पार पडला. योगायोगाने कोलकात्याचे ब्रीदवाक्य युद्धाय सर्व सनद म्हणजे युद्धासाठी नेहमी तयार आणि महार रेजिमेंटचे ब्रीदवाक्य यश सिद्धी म्हणजे यश आणि प्राप्ती एकमेकांना पूरक आणि साजेशी आहेत. जाणून घेऊया पुढील बातमी. दुबईत जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या विक्टर एक्सलन्स सोबत प्रशिक्षण घेण्याच्या भारतीय बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेनच्या प्रस्तावाला मिशन ऑलिम्पिक सेल समितीच्या सदस्यांनी मान्यता दिली. या महिन्यात प्रतिष्ठित थॉमस चषक जिंकणाऱ्या भारतीय पुरुष संघाचा सहभाग असलेला लक्ष 29 मे ते 5 जून या कालावधीत मुंबईमध्ये एक्सलन्स सोबत सराव करणार आहे. त्यानंतर मलेशियन प्रशिक्षण केंद्रात 19 ते 26 जून या कालावधीत प्रशिक्षणासाठी 19 जून रोजी मलेशियातील क्वालालंपूर येथे रवाना होणार आहे. राष्ट्रकुल खेळांच्या तयारीसाठी दोनही प्रशिक्षण प्रस्तावांना मिशन ऑलिम्पिक सेलने मान्यता दिली आहे. लक्ष्यच्या प्रस्तावाबरोबरच मिशन ऑलिम्पिक सेल समितीने बॅडमिंटनपटू आणि ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेती PV सिंधूचे फिटनेस ट्रेनर M श्रीकांत मदापल्लीला तिच्यासोबत आगामी अनेक स्पर्धांसाठी जाण्यासाठी आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव मंजूर केला. वळूया पुढील बातमीकडे. केंद्रीय पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची संयुक्त अरब अमिरातीचे हवामान बदल विषयाचे दूत आणि उद्योग तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान मंत्री डॉक्टर सुलतान अल जबेर यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक झाली आहे. यावेळी त्यांच्यात हवामान बदलांशी संबंधित विषयांवर चर्चा झाली. त्यात COP28 यजमानपद आणि इतर मुद्द्यांचा समावेश होता. या बैठकीआधी दोनही मंत्र्यांनी हवामान बदल विषयक एका सामंजस्य करारावरही स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराचा मूलभूत उद्देश हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी दोनही देशांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य निर्माण करणे, ते वृद्धिंगत करणे आणि पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी एकत्रित योगदान देणे हा आहे. द्विपक्षीय बैठकीत भूपेंद्र यादव यांनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या 2023 COP28 यजमानपदासाठीच्या प्रस्तावाची नोंद घेतली आणि ते म्हणाले की आपण विकसनशील देशांच्या समस्यांना विशेषतः अर्थसहाय्य आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अंमलबजावणी आणि मदत तसेच प्राधान्य दिले पाहिजे. हवामान बदल, अर्थसहाय्य, अनुकलन तोटे आणि नुकसान यावर COP26 पश्चात अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. यादव यांनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या हवामान बदल विषयक कारवाईची दखल घेतली, त्याची प्रशंसा केली, भारताच्या हवामान बदलावरील उपायांच्या कृतीविषयी सांगितले. संयुक्त अरब अमिरातीने आपत्ती प्रतिकार पायाभूत सुविधा संघटनेत आणि उद्योग संक्रमण नेतृत्व गटात सामील होण्याविषयी विचार करावा अशी विनंतीही केली. हवामान बदल विषयक सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्याने दोनही बाजू याविषयी परस्पर सहमतीने द्विपक्षीय सहकार्य, विशेषतः सामंजस्य करारात नमूद केलेली क्षेत्रे आणि कार्य कसे मजबूत करता येईल याचे प्रयत्न करू शकतील याची दोन्ही देशांनी दखल घेतली. वळूया पुढील बातमीकडे. भद्रवाह हे देशातील कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअपना मोठा वाव असलेले ठिकाण असल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. देशातील पहिल्या लॅव्हेंडर फेस्टिवलचे उद्घाटन केल्यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भद्रवाहचे वर्णन भारताच्या जांभळ्या क्रांतीची जन्मभूमी असे केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यावर प्रवाहापासून तुटलेल्या देशातील प्रदेशाला विकासाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहामध्ये सामील करण्यावर जोर दिला होता. देशातील प्रत्येक नागरिकाला रोजगार देणे विकसित देशांसह कुठल्याही देशाला शक्य नाही, मात्र आता स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया अंतर्गत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जांभळ्या क्रांती अंतर्गत स्टार्टअप्स ही स्टार्टअप इंडिया आणि स्टँडअप इंडिया अंतर्गत असलेल्या संधींपैकी एक असल्याचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह म्हणाले. लव्हेंडरच्या लागवडीने जम्मू आणि काश्मीरच्या दुर्गम भागातल्या अंदाजे 5,000 शेतकरी आणि तरुण उद्योजकांना रोजगार दिला असून 1,000 जास्त शेतकरी कुटुंब 200 जास्त परिसरात लव्हेंडरची लागवड करत आहेत. भारतातील ई कचरा व्यवस्थापनाबाबत जनतेच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. जाणून घेऊया त्यासंबंधीची बातमी. भारतात ई कचरा व्यवस्थापनासाठी औपचारिक नियमांचा एक औपचारिक संच उपलब्ध आहे. हा संच 2016 सादर करण्यात आला होता. 2018 या संचाला सुधारण्यात आले. या अधिसूचनेनुसार ग्राहक उपयोगी वस्तू कंपन्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादकांना 2023 त्यांचा किमान 60% इलेक्ट्रॉनिक कचरा गोळा करून पुनर्वापर आणि 2024 तसंच 2025 या भागाच्या अनुक्रमे 70-80% याची खात्री करावी लागेल. नव्या अधिसूचनेनुसार कंपन्यांना चुकलेल्या उद्दिष्टांसाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. जाणून घेऊया पुढील बातमी. अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्टच्या सहकार्याने ओडिशात मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीद्वारे भारतातील पहिला ऑलिम्पिक मूल्यशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च करण्यात आला आहे. ऑलिम्पिक मूल्यशिक्षण कार्यक्रम ओडिशाच्या शालेय शिक्षण प्रणालीमध्ये समाकलित केला जाईल, जो मूल्यावर आधारित अभ्यासक्रम असेल. ऑलिम्पिक मूल्यशिक्षण कार्यक्रम सुरुवातीला राऊरकेला आणि भुवनेश्वरमधील 90 राबवण्यात येईल, ज्यामध्ये सुमारे 32,000 मुलांचा समावेश असेल. ऑलिम्पिक व्ह्यूज एज्युकेशन प्रोग्राम आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने तरुणांना उत्कृष्टता, प्रतिष्ठा आणि ऑलिम्पिक मूल्यांची ओळख करून देण्यासाठी तयार केलेल्या संसाधनांचा व्यावहारिक वापर आहे. बैठी जीवनशैली, एकाग्रतेचा अभाव आणि किशोरवयीन मुलांची गळती या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ऑलिम्पिक मूल्यशिक्षण कार्यक्रम 2006 विकसित करण्यात आला. जाणून घेऊया शेवटची बातमी. नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगाद्वारे महेश तलाव पश्चिम बंगाल येथे हायब्रिड अॅन्युईटी म्हणजे वार्षिकी मोड अंतर्गत सांडपाणी पायाभूत सुविधा विकास आणि व्यवस्थापनासाठी चतुर्भुज करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. हा करार नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी मेसर्स महेश तला वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ऑस्ट्रियन डेव्हलपमेंट बँक यांच्यातील बदली करार आहे. शहरातून गंगा नदीकडे जाणारा सांडपाण्याचा प्रवाह थांबवणे हे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. प्रकल्पाच्या प्रमुख घटकांमध्ये 35 MLG सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, 4 पंपिंग स्टेशन, 6 वळण संरचना दुरुस्ती आणि पुनर्वसन कामे, 15 ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. सांडपाण्याच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स या उपलब्धतीवर आधारित ऑस्ट्रियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून मेसर्स महेश तला सांडपाणी व्यवस्थापन प्रायव्हेट लिमिटेडला वित्तपुरवठा केला जाईल. हा प्रकल्प हायब्रिड अॅन्युईटी या पद्धतीवर आधारित असून त्यानुसार बांधकाम खर्चाच्या 40% रक्कम 24 महिन्यांच्या बांधकाम कालावधीत भरावी लागते. उर्वरित 60% व्याज आणि परिचालन देखभाल खर्चासह त्रैमासिक वार्षिकी म्हणून दिली जाते. उर्वरित 60% व्याज परिचालन व देखभाल खर्च वर्षानुवर्ष केला जातो. नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ही राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणची अंमलबजावणी शाखा आहे. नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ही नोंदणीकृत सोसायटी आहे, ज्याची स्थापना पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 12 ऑगस्ट 2011 रोजी सोसायटी नोंदणी कायदा 1860 अंतर्गत केली आहे. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आज अशा पद्धतीने आपण चालू घडामोडींचा आढावा घेतला आहे. पुन्हा भेटूया पुढील सत्रात. तोपर्यंत स्टे ट्यून टू रेडिओ एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी. धन्यवाद.
नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी. मैं आज उद्धव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी कार्यक्रम. चलिए सुनते हैं हमारे डेली करंट अपडेट हिंदी भाषा में. अपडेट है राज्य के बारे में. केरल भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म स्वी स्पेस लाएगा. देश में पहली बार केरल 1 नवम्बर को एक राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म स्वी स्पेस लॉन्च करेगा, जो फिल्म प्रेमियों को उनकी पसंद की फिल्में, लघु में और डॉक्यूमेंट्री की श्रृंखला पेश करेगा. सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने एक समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से केरल राज्य फिल्म विकास निगम की एक पहल स्पीसेस के रूप में OTT प्लेटफॉर्म नामक एक खुलासा किया. KSFDC के अध्यक्ष राजी एन करुण ने समारोह की अध्यक्षता की. कई अनूठी विशेषताओं से युक्त स्पीसेस का शुभारंभ 1 नवम्बर को राज्य के गठन दिवस के साथ होगा. यह देखते हुए कि यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल थी, चेरियन ने कहा कि राज्य के स्वामित्व OTT की शुरुआत की एक नई शुरुआत को चिन्हित करेगी और मलयालम सिनेमा के विकास में काफी मदद करेगी. बढ़ते अगली अपडेट की ओर. हंसा NG विमान का इंजन रिलायड परीक्षण सफल हुआ. हंसा NG 2-सीटर फ्लाइंग ट्रेनर विमान CSIR NAL द्वारा डिजाइन और विकसित ने DRDO की वैमानिक परीक्षण रेंज चलकेरे में इन फ्लाइट इंजन रिलाइट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. विमान और सिस्टम परीक्षण प्रतिष्ठान भारतीय वायुसेना इन फ्लाइट इंजन रिलाइट क्षमता के परीक्षण पायलट द्वारा 7000 से 8000 फीट की ऊंचाई पर 60 से 70 समुद्री मील की गति सीमा के साथ उड़ान परीक्षण किया गया था. विंड मिलिंग प्रोपेलर और स्टार्टर असिस्टेड स्टार के साथ विमान की इन फ्लाइंग इंजन रिलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया गया. इन परीक्षण उड़ानों के दौरान विमान संचालन लक्षण और उड़ान मानक सामान्य पाए गए. CSIR NAL ने उल्लेख किया कि DGCA द्वारा विमान के प्रमाण की दिशा में इन फ्लाइट इंजन रिलाइट परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण और अहम है. बढ़ते अगले अपडेट की ओर. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत राव मान ने चंडीगढ़ में लोगों की शिकायतों के मौके पर निवारण के लिए अपनी सरकार के प्रमुख लोक मिलनी सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री ने यहाँ पंजाब भवन में इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा, यह मेरी सरकार का एक विनम्र कदम है जिसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम लोगों को उनके लंबे समय से लंबित प्रशासनिक मुद्दों को हल करने में सुविधा प्रदान करे. CM के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करना है. CM ने बताया, लोग मिलने के दौरान मेरी सरकार के शीर्ष अधिकारी मेरे साथ रहेंगे ताकि लोगों द्वारा उठाए गए मामलों का मौके पर ही निस्तारण हो सके. बढ़ते अगली अपडेट है नियुक्ति की ओर. इंडिगो ने पीटर एल्बर्स को CEO नियुक्त करने की घोषणा की है. एल्बर्स 1 अक्टूबर को या उससे पहले भार ग्रहण करेंगे, जो अभी नियामकीय मंजूरी के अधीन है. 2014 से एल्बर्स ने KLM रॉयल डच एयरलाइंस के अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्य किया है. इंडिगो ने एक बयान में कहा कि एल्बर्स ने रोनोजॉय दत्ता की जगह ली है, जिन्होंने COVID-19 के संकट के दौरान एयरलाइन का मार्गदर्शन करने के बाद 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है. इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने कहा, निदेशक मंडल और मैं रानो को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग 4 वर्षों तक हमारे व्यवसाय का प्रभावी ढंग से नेतृत्व किया, जो एयरलाइंस के इतिहास और वैश्विक स्तर पर विमानन के इतिहास में सबसे अशांत अवधि रही है. बढ़ते अगले अपडेट की ओर. यह अपडेट है, निर्मला सीतारमण ने NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की. श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सातवीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात के गवर्नर, अल्टरनेट गवर्नर और नए शामिल हुए सदस्यों ने भी भाग लिया। चल रही महामारी के कारण एनडीबी की यह वार्षिक बैठक, जिसकी मेजबानी अध्यक्षता इस वर्ष भारत द्वारा की गई थी, इसका आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया था। वार्षिक बैठक के लिए इस वर्ष का विषय एनडीबी ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट था, जो वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। वित्त मंत्री ने अपने बयान में बहुपक्षवाद के महत्व और आर्थिक सुधार के लिए वैश्विक सहयोग की भावना को रेखांकित किया। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम 1 रॉकेट इंजन, देश के पहले निजी तौर पर डिजाइन और विकसित रॉकेट की पूर्ण अवधि के परीक्षण फायरिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की है। विक्रम 1 में ठोस ईंधन से चलने वाले 3 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 80 और 108 सेकंड के बीच फायरिंग का समय होता है। विक्रम 1 का तीसरा चरण या इंजन कलाम 100 या 100 kN या लगभग 10 टन का पीक वैक्यूम थ्रस्ट पैदा करता है और इसका जलने का समय 108 सेकंड है। स्टार्टअप ने कहा कि इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति और रॉकेट वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। स्काईरूट के सह संस्थापक और सीईओ पवन कुमार चंदा ने कहा, चरण ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और यह सफलता हमारे अन्य रॉकेट चरणों के लिए जल्द ही परीक्षण करने की योजना बन रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई। आधिकारिक मीडिया ने बताया कि चीनी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 32 प्रकाश वर्ष दूर सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करने के लिए एक आंतरिक जानित दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरिक्ष परियोजना का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो क्लोजबी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे नाम की यह परियोजना पहला अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसे विशेष रूप से सूर्य जैसे सितारों के आसपास रहने योग्य स्थलीय ग्रहों की खोज के लिए बनाया गया है। सौर मंडल के बाहर रहने योग्य ग्रहों की खोज खगोल विज्ञान में मौलिक अनुसंधान की प्रमुख सीमाओं में एक है। चेस एक लंबी अवधि के सर्वेक्षण पर 32 प्रकाश वर्ष दूर लगभग 100 सूर्य जैसे सितारों का निरीक्षण करेगा और उम्मीद है कि लगभग 50 पृथ्वी जैसे ग्रह या सुपर अर्थ ऐसे ग्रह खोजेंगे जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना तक है। बढ़ते अगले अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। आईडीबीआई बैंक एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा बेचेगा। आईडीबीआई बैंक ने एजेस इंश्योरेंस इंटरनेशनल के साथ एक शेयर खरीदी समझौता किया है, जिसमें बैंक निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ता एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में 25% की अपनी शेष हिस्सेदारी को 580 करोड़ रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा है। सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के बाद, जिससे एजेस अपने भारतीय बीमा संयुक्त उद्यम में अपनी हिस्सेदारी 70% तक बढ़ाने के लिए कुछ विदेशी बीमा कंपनियों में से एक बन गया है। लेन देन को Q2 FY 23 में पूरा किया जाने की उम्मीद है, जो नियामक अनुमोदन और शेयर खरीद समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों की संतुष्टि के अधीन है। एक यूरोपीय बीमा कंपनी एजिस ने पहले भारतीय बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी दिसंबर 2020 में 26% से बढ़ा 49% कर दी थी। बढ़ते हैं अगले अपडेट है खेल के बारे में। अडानी ग्रुप ने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की। अडानी समूह की सहायक कंपनी अडानी स्पोर्ट लाइन ने 6 सदस्यीय संयुक्त अरब अमीरात T20 लीग में फ्रेंचाइजी के स्वामित्व और संचालन के अधिकार हासिल कर लिए हैं। इसके साथ यह रिलायंस इंडस्ट्रीज GMR समूह और कैपरी ग्लोबल मुंबई स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बाद जून में शुरू इंडियन प्रीमियर लीग शैली टूर्नामेंट में टीमों का मालिक बनने वाला 4th भारतीय समूह बन गया है। RIL की सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स ने नवंबर 2021 में यूएई T20 लीग फ्रेंचाइजी अधिकार हासिल कर लिए थे, जबकि MR और कफरी ग्लोबल ने क्रमशः फरवरी और मार्च में टीम के अधिकार हासिल किए थे। RIL मुंबई इंडियंस IPL फ्रेंचाइजी का मालिक है, जबकि GMR दिल्ली कैपिटल्स का सह मालिक है। अडानी यूएई T20 लीग के 5वें फ्रेंचाइजी के मालिक होंगे, जो विदेश में क्रिकेट में अपना पहला बड़ा कदम है। बढ़ते हैं अपने आखिरी अपडेट की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने 2000 2022 में भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 2022 में भारत की विकास दर 6.4% बढ़ाने की उम्मीद है, जो 2021 में 8.8 की वृद्धि टका से काफी कम है, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति दबाव और श्रम बाजार की असमान वसूली से निजी खपत और निवेश पर अंकुश लगने की संभावना है। इनसे कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब 2022 में 3.1% बढ़ाने का अनुमान है, जो जनवरी में अनुमानित 4% से नीचे है, क्योंकि अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और अधिकांश विकासशील देशों सहित विकास की संभावनाओं के व्यापार आधार पर गिरावट आई है। 2022 के मध्यम तक अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने कहा कि वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 6.7% तक बढ़ाने का अनुमान है, जो 2010 से 2020 के दौरान 2.9% के औसत से दो गुना है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा में। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूं अलविदा। सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।
हेलो लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू रेडियो एमपीएससी गुरु पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। दिस इज योर आरजे प्रियंका वेलकमिंग यू टू आवर डेली एपिसोड ऑफ डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स। Today is 27th May 2022. Let's start with our daily update number 1, which belongs to the category of state. Kerala to bring India's first state-owned OTT platform, C-Space. Kerala will launch a state-owned over-the-top OTT platform, C-Space, in a first in the country on November 1st, offering film fans a selection of movies, short films and documentaries. Through video conferencing at a function, Minister for Cultural Affairs Saji Cherian revealed the name of the OTT platform, C-Space, which is an initiative of Kerala State Film Development Corporation, KSFDC, on behalf of the state government. The event was presided over by KSFDC Chairman Shaji N. Karun. C-Space launch, which will include several unique features, will coincide with the state's formation day on November 1st. Noting that this was a first of its kind initiative in India, Cherian said the launch of the state-owned OTT will mark a new beginning and will considerably help in the growth of Malayalam cinema. Our next daily update, that is update number 2, belongs to the category of science and technology. Engine relight test on the Hansa NG aircraft successful. Designed and developed by CSIR NAL, Hansa NG two-seater flying plane trainer aircraft has successfully completed in-flight engine relight at DRDO's Aeronautical Test Range, ATR facility, Challakere. Flight tests were conducted at an altitude of 7,000 to 8,000 feet at speeds ranging from 60 to 70 knots by test pilots from the Indian Air Force Aircraft and Systems Testing Establishment, ASTE, IAF. The aircraft's in-flight engine relighting capability was demonstrated using a windmilling propeller and a starter-assisted start. During these test flights, the aircraft handling characteristics and flight parameters were found to be normal. According to CSIR NAL, the in-flight engine relight test is the most critical and important milestone towards DGCA certification of the aircraft. Let's move on to our third update, which belongs to the category of state. Punjab CM Bhagwant Mann launched Lok Milni scheme for redressal of public complaints. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has launched his government's flagship Lok Milni public interaction program in Chandigarh to address people's grievances on the spot. This is a humble step of my government to make sure that we facilitate the people for resolving their long pending administrative issues, the Chief Minister said at the program's launch here at Punjab Bhavan. According to the CM, the program's goal is to provide a single point of contact for people to file complaints. The top brass of my government will accompany me during the Lok Milni to ensure that the matters flagged by people are immediately resolved on the spot, the CM stated. Next daily update belongs to the category of appointment. This is our fourth update. IndiGo appoints
Peter Elbers as CEO. The appointment of Peter Elbers as its new Chief Executive Officer, CEO, has been announced by IndiGo Airlines. Elbers will take office on or before October 1st, pending approval. Elbers has been the President and CEO of KLM Royal Dutch Airlines since 2014. Elbers succeeds Ranjoy Datta, who has decided to retire on September 30, 2022, after guiding IndiGo through the turbulent COVID period, according to a statement from the airline. The board of directors and I would like to thank Rono for effectively leading our business for almost 4 years with a steady hand through what has been the most turbulent period in the airline's history and aviation globally, said Rahul Bhatia, Managing Director of IndiGo. Let's move on to our fifth daily update, which belongs to summits and conferences. Nirmala Sitharaman chairs the 7th annual meeting of Board of Governors of NDB. Shrimati Nirmala Sitharaman, Union Minister of Finance and India's Governor for the New Development Bank, NDB, presided over the 7th annual meeting of the Board of Governors of NDB through video conference in New Delhi. Governors or alternate governors from Brazil, China, Russia, South Africa, and newly admitted members, Bangladesh and the United Arab Emirates, also attended the meeting. Due to the ongoing pandemic, this year's NDB annual meeting, which was hosted or chaired by India, was held virtually. The annual meeting theme this year was NDB Optimizing Development Impact, which is especially important and relevant in the current global economic scenario. In her statement, the finance minister emphasized the importance of multilateralism and the spirit of global cooperation for economic recovery. Let's move to our daily update number 6, which belongs to the category Science and Technology. Skyroot Aerospace successfully test fires its rocket engine. Skyroot Aerospace, a Hyderabad-based space tech startup, has announced the successful completion of a full-length test firing of its Vikram 1 rocket engine, the country's first privately designed and developed rocket. Vikram 1 is powered by 3 solid fuel stages. The burn time for each stage varies between 80 to 108 seconds. The Kalam 100 engine, or third stage of Vikram 1, produces a peak vacuum thrust of 100 kN or around 10 tons and has a burn time of 108 seconds. According to the startup, it is named after former president and rocket scientist APJ Abdul Kalam. The stage has delivered excellent performance, and this success gives great confidence for our other rocket stages planned to be tested soon, said Skyroot co-founder and CEO Pawan Kumar Chandana. Let's move on to our 7th daily update, which belongs to the category of international. China plans world's first habitable planet search with space telescope. According to official media, Chinese scientists have proposed a space project to survey the sky with a space-borne telescope in search of habitable Earth-like planets outside the solar system, approximately 32 light-years from Earth. If carried out, the Close-by Habitable Exoplanet Survey, CHES, project will be the first space mission specifically designed to search for habitable terrestrial planets around nearby sun-like stars, according to the report. Exploration of the habitable planets outside the solar system is a key frontier of fundamental astronomical research. The CHES will conduct a long-term survey of about 100 sun-like stars 32 light-years away in the hopes of discovering 50 Earth-like planets or super-Earths, planets that are up to 10 times the mass of Earth. Let's move further to our daily update number 8, which belongs to the category of economy. IDBI Bank to sell quarter of its stocks in AGS Federal Life Insurance. IDBI Bank has entered into a share purchase agreement with AGS Insurance International, wherein the bank is looking to sell its remaining stake of 25% in private sector life insurer Aegis Federal Life Insurance for ₹580 crore, making Aegis one of the few foreign insurers to raise its stake in its Indian insurance joint venture to 74% after the government raised the FDI cap in the insurance sector. The transaction is expected to close in Q2 FY23, subject to regulatory approvals and satisfaction of the share purchase agreement's terms and conditions. Aegis, a European insurer, had previously increased its stake in the Indian insurer to 49%, up from 26% in 2020 December. Let's move further to our ninth update of today, which belongs to the category of sport. A franchisee in UAE-based T20 League bought by Adani Group. An Adani Group subsidiary, Adani Sportsline, has acquired the rights to own and operate a franchise in the six-team UAE T20 League. With this, it becomes the fourth Indian group to own teams in the Indian Premier League IPL-style tournament, following Reliance Industries, RIL and GMR Group and Capri Global, a non-banking financial company based in Mumbai. The UAE T20 League franchisee rights were purchased by RIL subsidiary Reliance Strategic Business Ventures in November 2021, while GMR and Capri Global acquired the team rights in February and March respectively. RIL owns the Mumbai Indians IPL franchisee, while GMR co-owns Delhi Capitals. Adani will be the fifth franchise owner of the UAE T20 League, making its first major foray into cricket overseas. Our 10th and last update for today belongs to the category Rank and Report. United Nations forecasts India's growth rate to be 6.4% in 2022. According to United Nations, India's growth rate is expected to be 6.4% in 2022, down from 8.8% in 2021, as higher inflationary pressures and uneven labor market recovery are expected to curb private consumption and investment. The global economy is now expected to grow at 3.1% in 2022, down from 4% in January due to a broad deterioration in growth prospects that includes the US, EU, China and the majority of developing countries, according to the United Nations Department of Economic and Social Affairs World Economic Situation and Prospects report for mid-2022, global inflation is expected to reach 6.7% in 2022, more than double the average of 2.9% from 2010 to 2020 due to sharp increases in food and energy prices. So listeners, with this last update, we have come to the end of our daily session of Daily Current Affairs Updates. For more, stay tuned to Radio MPSC Guru, powered by Spectrum Academy. Thank you.
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तेजल, आप सभी का स्वागत करते हुए स्पेक्ट्रम अकेडमी के रेडियो एमपीएससी गुरु पे। आइए सुनते हैं डेली करंट अफेयर्स क्वीज। आज के क्वीज का पहला सवाल है, ग्रीनको ग्रुप द्वारा किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की गई थी? विकल्प ए आंध्र प्रदेश, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी मध्य प्रदेश या फिर विकल्प डी राजस्थान। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए। ग्रीनको ग्रुप ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की है। अगला सवाल, केस बिन मोहम्मद अल यूसेफ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है, वह किस देश के वाणिज्य मंत्री है? विकल्प ए यमन, विकल्प बी संयुक्त अरब अमीरात, विकल्प सी सऊदी अरब या फिर विकल्प डी ओमान। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी। केस बिन मोहम्मद अल यूसेफ माननीय वाणिज्य उद्योग मंत्री और ओमान सल्तनत के निवेश संवर्धन मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधि मंडल ने 10 से 14 मई 2022 तक भारत का दौरा किया है। अगला सवाल, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है? विकल्प ए मुंबई विश्वविद्यालय, विकल्प बी कलकत्ता विश्वविद्यालय, विकल्प सी पटना विश्वविद्यालय, विकल्प डी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कलकत्ता विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है। अगला सवाल, किस बैंक ने यूपीआई भुगतान की पेशकश करने के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ भागीदारी की है? विकल्प ए बंधन बैंक, विकल्प बी IDFC फर्स्ट बैंक, विकल्प सी RBL बैंक या फिर विकल्प डी साउथ इंडियन बैंक। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी। RBL बैंक अमेजॉन पे और अमेजॉन वेब सर्विसेज ने UPI भुगतान की पेशकश करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। अगला सवाल, किस भारतीय एरोस्पेस कंपनी ने विक्रम 1 लॉन्च वाहन पर कलाम 100 इंजन का परीक्षण किया है? विकल्प ए स्काईरूट एरोस्पेस, विकल्प बी पिक्सेल, विकल्प सी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस या फिर विकल्प डी अग्निकुल कॉस्मोस। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने कलाम 100 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो विक्रम 1 लॉन्च के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करेगा। अगला सवाल, विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 कब मनाया गया? विकल्प ए 22 मई, विकल्प बी 21 मई, विकल्प सी 20 मई या फिर विकल्प डी 19 मई। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी। हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प ए उत्तराखंड, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी कर्नाटक या फिर विकल्प डी झारखंड। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल, कौन सा देश मार्चे डू फिल्म 2022 ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर था? विकल्प ए US, विकल्प बी बांग्लादेश, विकल्प सी भारत या फिर विकल्प डी स्पेन। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी। भारत फ्रांस ने कान फिल्म समारोह के 75वें संस्करण के साथ आयोजित मार्चे डू फिल्म 2022 में ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर था। अगला सवाल, किस IIT ने उपयोगकर्ता के अनुकूल मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ भागीदारी की है? विकल्प ए IIT दिल्ली, विकल्प बी IIT मद्रास, विकल्प सी IIT बॉम्बे या फिर विकल्प डी IIT रुड़की। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी। IIT बॉम्बे ने उपयोगकर्ता के अनुकूल मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ भागीदारी की है। आखिरी सवाल है, फीडा पेने SME फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप सहित उद्यमों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए डिजिटल सुविधा का विस्तार करने के लिए किस बैंक के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? विकल्प ए SBI, विकल्प बी ICICI बैंक, विकल्प सी यस बैंक या फिर विकल्प डी HDFC बैंक। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी। फिनटेक प्लेटफॉर्म फीडा पे ने SME फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप सहित उद्यमों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए डिजिटल सुविधा का विस्तार करने के लिए यस बैंक के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के क्वीज। ऐसे ही शानदार क्विजेस सुनने के लिए स्टे ट्यून टू रेडियो MPSC गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
हेलो लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू रेडियो MPSC गुरु पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकेडमी। दिस इज योर RJ प्रियंका एंड आई नाउ वेलकम यू टू आवर डेली करंट अफेयर्स क्विज। टुडेज डेट इज 27th May 2022। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन of the quiz. The world's largest integrated renewable energy storage project IRESP was launched by Greenko Group in which of the following state? Option A Andhra Pradesh, Option B Karnataka, Option C Madhya Pradesh or Option D Rajasthan. The correct answer for this Question is A. Greenko Group has launched the world's largest integrated renewable energy storage project IRESP at Kurnool district in Andhra Pradesh. Let's move further to the question number 2. A high-level multi-sectoral delegation headed by Qais bin Muhammad Al Yusuf has visited India recently. He is the commerce minister of which of the following country? Is it A. Yemen, B. United Arab Emirates, C. Saudi Arabia, or D. Oman? Correct answer for the question is D. A high-level multi-sectoral delegation headed by Qais bin Muhammad Al Yusuf, Honorable Minister of Commerce, Industry and Investment, Promotion of the Sultanate of Oman, has visited India from May 10 to 14, 2022. Let's move to the question number 3 of the quiz. Which of the following university ranked first in the Times Higher Education Impact Rankings 2022? Is it A. Mumbai University? Is it B. Calcutta University? C. Patna University? Or D. Chandigarh University? Correct answer for the question is B. Calcutta University has been ranked first in the Times Higher Education Impact Ranking 2022. Let's move to the question number 4. Which of the following bank partnered with the Amazon Web Services AWS to offer UPI payment? Is it A. Bandhan Bank, B. IDFC First Bank, C. RBL Bank, or D. South Indian Bank? The correct answer for the question is C. RBL Bank, Amazon Pay and Amazon Web Services AWS has announced a partnership to offer UPI payment. Let's move to question number 5 of our quiz. Which of the following Indian aerospace company has tested the Kalam 100 engine on Vikram 1 launch vehicle? Is it A. Skyroot Aerospace? Is it B. Pixel? Is it C. Bellatrix Aerospace? Or is it D. Agnikul Cosmos? Correct answer for the question is A. Indian space startup Skyroot Aerospace has successfully tested the Kalam 100 engine that will power the third stage of the Vikram 1 launch. Let's move to question number 6. When the World Bee Day 2022 was observed? Is it A. 22nd May, B. 21st May, C. 20th May, or D. 19th May? Correct answer for the question is C. Every year, World Bee Day is celebrated on May 20. Let's move to question number 7. For renewable energy projects, which of the following state has signed an MOU with the Bharat Petroleum Corporation Limited? Is it A. Uttarakhand, B. Uttar Pradesh, C. Karnataka, or D. Jharkhand? The correct answer for the question is A. Uttarakhand government has signed a Memorandum of Understanding MOU with Bharat Petroleum Corporation Limited for the development of new and renewable energy projects in the state. Let's move to our 8th question of today's quiz. Which of the following country was the official country of honor at the March du Film 2022? Is it A. US? Is it B. Bangladesh? Is it C. India? Or is it D. Spain? Correct answer for the question is C. India was the official country of honor at the March du Film 2022, organized alongside the 75th edition of the Cannes Film Festival in France. Let's move to question number 9. Which of the following IIT has partnered with the India Meteorological Department to develop user-friendly weather forecasting applications? Is it A. IIT Delhi? Is it B. IIT Madras? Is it C. IIT Bombay? or is it D, IIT Roorkee? The correct answer for the question is C. IIT Bombay has partnered with the India Meteorological Department to develop user-friendly weather forecasting applications. Let's move to the last question of today's quiz, that is question number 10. Fidipay has announced its partnership with which of the following bank to extend digital facilitation to a wide range of enterprises including SMEs, fintech companies and startups? A. SBI, B. ICICI Bank, C. Yes Bank or D. HDFC Bank. The correct answer for the question is C. Fintech platform Fidipay has announced its partnership with Yes Bank to extend digital facilitation to a wide range of enterprises including SMEs, fintech companies and startups. So with this question, we have come to the end of another episode of our daily current affairs quiz program. For more, please stay tuned to Radio MPSC Guru, powered by Spectrum Academy. Thank you.